ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
ताजा सब्जियां ली तुहाडा अपना फार्म कैलगर सब्जी फार्म, जिथे तुसी ले सकदे हो निखरे पौधे, मिट्टी, गमले अते हर तरह दे फुल ते सब्जियां दी पनीरी। अपने घर विच कोई भी सब्जी या फुल दे पौधे उगाण लई कैलडन सब्जी फार्म ते आओ। असी सवेरे 9 बजे तो शाम 8 बजे तक तुहाडी सेवा लई हाजिर हां। 12050 एयरपोर्ट रोड कैलडन, जां तुसी फोन करो 9058409000
970 AM
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe hain, ko remove karke bedaag karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting, ya wallpaper lagwana chahte hain, to call kijiye Texture style painting ke liye Painters of GTA 6472711974. Mohammed Salim 6472711974.
वेलकम बैक तमाम सामीन जो मैं सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ प्रोग्राम में गर्मा गर्म खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच गई हैं शाजिया मलिक साहिबा। 6 बज चुके हैं और खबरों का टाइम भी शुरू होने लगा है। आइए उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, वैसे ही हैं।
वालेकुम अस्सलाम व
रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
तो वैसे ही जैसे कहीं ना, मुझे तो लगा कि आज शायद आप 2-4 इंच ऊपर हो जाएंगी, आपका कद बढ़ जाएगा।
क्या मतलब है, घर जाके मुझे घर वालों ने खाद में लगाया था कि मेरा कद बड़ा हो
जाए? नहीं, कुछ पौधे होते हैं ना वो गर्मी में ज्यादा बढ़ते हैं, जैसे हाँ। वो तो अच्छा रिस्पांस देते हैं, जैसे आम का पेड़ है
हाँ।
वो जितनी गर्मी होगी उसके लिए अच्छा है।
अच्छा।
तो मैं उस सेंस में कहता कि गर्मी 2 दिन से बहुत पड़ रही है ना, तो शायद कोई ना कोई अच्छी चीज हुई हो।
फिर भी अगर गर्मी भी पड़ रही हो तो खाद में पौधे लगाने पड़ते हैं ना, तो वो खाद में जब तक नहीं लगाए जाएंगे तो हमारा कद कैसे बड़ा होगा?
तो यूरिया नहीं मिल रहा आपको? ओहो,
यूरिया नहीं मिल रहा, फिर सन में नहीं रखा हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, फूड नहीं बन रहा, तो वो कैसे बेचारा ये मासूम पौधा जो अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, ये कैसे अब लंबा होएगा?
नहीं नहीं, अब तो टाइम गुजर गया,
टाइम गुजर गया ना,
अब नहीं गुजर, अब कुछ भी नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता।
अभी तो बस वो कहते हैं ना कि जितना है जैसा है की बुनियाद पर उसी में खुश रहे,
गुजारा करें,
खुश रहने की कोशिश करें। मैंने ये बोला,
खुश तो है लेकिन उसमें गुजारा करने की कोशिश करें।
हाँ तो करना पड़ेगा ना। देखें बेचारे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी गुजारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
कोई नहीं सुन रहा उसकी।
उनकी कोई सुन ही नहीं रहा बेचारे। आज तो मैं कहता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्रेसिडेंट ने प्रेस के सामने इतना गुस्सा जहां उन्होंने सब कुछ पार कर दिया। मेरा नहीं, मैं तो आपने अपनी
क्योंकि
आप तो 45 से कर रही हैं जर्नलिज्म, तो आपने कभी ऐसा देखा कि इतना कोई आके एग्रेशन?
दूसरे होते हैं लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को,
अमेरिकन की बात कर रहा हूँ,
कभी तपा हुआ नहीं देखा
इतना तो मैंने नहीं,
क्योंकि उनका वैसे ही यूरोपियंस का वैसे भी स्वभाव जो है ना, जो जरा ठंडा से ठंडे मुल्कों में रहते हैं,
ठंडे मुल्कों में रहते हैं,
ठंडा है, तो जो हम जो गर्म मुल्कों में रहते हैं ना, ये हम हमारे स्वभाव जो है वो
अलग है,
बहुत गर्म किस्म के हैं, जूतियां एक दूसरे को उठा उठा के मारते हैं, माइक फेंक देते हैं, है ना,
ये तो
चीखना चिल्लाना
क्योंकि कल्चर है, ये एक कल्चर है, वहां का हिस्सा है, माइक जब तक यू हिलाए तो उनकी तकरीर नहीं होती। ये तो
इंडिया की वो उसमें देख रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें एक उनकी एमपी है, तो वो बोल रही हैं चाय वाला, अब उस पे बिला वजह बीजेपी के
दोनों तरफ ऐसे ही चलता है,
भड़क गए और क्या चीख चलाया, तो वो उसने बोला कि मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, तो आप क्यों चीख रहे हैं, मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ। और फिर
कुछ सिम्बॉलिक होती है, पता सबको होता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं।
और जो हमारी पार्लियामेंट में भी एक दफा हुए थे,
आम है, लेकिन मैं बात वहीं जहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब की,
ठंडे
वो इतने
एग्रेसिव नहीं होते,
नहीं करते ना। और आज तो जाते वक्त उन्होंने बस मुझे लगा कि
जरा एक्टिंग करके दिखा,
नहीं मैं इस वक्त क्योंकि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल एयर पे नहीं बोल सकता मैं,
नहीं बोलो बोलो,
लेकिन जो उनका गुस्सा था वो नजर आया, लेकिन
गुस्सा ही दिखा दो,
नहीं वो गुस्सा बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी न्यूज है ना, गुस्से में न्यूज नहीं सुनानी चाहिए। दूसरा जो मैं आपसे कल बात कर रहा था, आज आपने वो जो मैं सीएनएन के भी थोड़ी देर पहले भी कोट कर रहा था, जो सोर्सेज के मुताबिक आ रहे हैं कि मैसेजेस जिसको जो यूएस डिपार्टमेंट है वो इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रहा है, लेकिन सीएनएन ये कहता है कि हमारे पास सोर्सेज की रिपोर्ट है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए उससे न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं हुई है, और यूएस का सिर्फ इतना मोटिव था कि इसे कम अज कम एक महीने के लिए चीजों को रोक दिया जाए,
रोक दें, या कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो अपने यार दोस्त हैं ना इसराइलियों को जरा खुश कर दें, उनकी तरफ से बहुत प्रेशर था ना।
कल जब मैं आपसे जो बात कर रहा था वो नोट वहीं पड़ा हुआ इसी चीज पे लिखा हुआ कि ये जो बॉम्ब गिरा है उससे ईरान की फैसिलिटीज को कोई नुकसान नहीं हुआ,
वो सिर्फ वो इसराइल के जोर में आके
अब तक की जो खबर है,
वही तो वो
कल को खबर आ जाए तो वो
अल्लाह को बताना चाहता था कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, हाँ तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम जो चाहते हो हम कर लेते हैं।
यस,
तो बस
क्योंकि पीछे वो जो कल आरफा पर भी बात कर रही है, और आपने जो हम बात कर रहे थे जो इसराइल की लॉबी है अमरीका में जो काम कर रही है, उनका बहुत प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप
पे, बात क्लियरली की थी कि अमरीका इसराइल को नहीं चलाता, इसराइल अमरीका पे चलाता है,
बहुत प्रेशर,
सारी दुनिया को अमरीका चलाता है,
इसराइल के जो कंट्रोल्ड है वो अमरीका के ऊपर बहुत है
ना हर चीज,
और मुझे लगता है कि शायद उन्हीं की वही बात है कि उनके प्रेशर में या उनको खुश करने के लिए, जैसा अभी कहा हमने बात की कि उनको खुश करने के लिए शायद ये कर दिया भी हो, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हो रही ना। अभी जो आपको याद है वर्ड शुरू हुआ था रिजीम चेंज से, इसराइल ने भी पहले बात की, फिर इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी बात की, लेकिन अगर ये सब सीज फायर हो जाता है जो कि नजर आ रहा है अभी हो गया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि वो सीज फायर को फॉलो करें,
तो ये नहीं हुआ सीज फायर। अब मैं आपको खबरें सुनाऊंगी तो
हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये सीज फायर नहीं हुआ है,
नहीं
ये सीज फायर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कल आकर
उन्होंने खुश करने के लिए इसराइल को एक वो बॉम्ब इधर उधर मारा ना, वैसे ही इसराइल ने उसको खुश करने के लिए अभी के लिए बोल दिया हमने, ये हुआ नहीं है सीज़।
तो इसराइल पीछे नहीं हट रहा, लेकिन अगर ये रिजीम चेंज नहीं होता है 1% अगर हम बात करते हैं, तो फिर इस जंग का मतलब ये जंग करनी की क्यों है? ये 12 दिन एक दूसरे के ऊपर जो मिसाइल गिराए हैं, इसराइल ने भी गिराए हैं, ईरान ने भी वहां उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है,
दो मकसद,
तो ये सब ड्रामेबाजी हुई क्यों?
हाँ ये हुई इसलिए, दो मकसद है इसके। एक तो ये इसराइल ने बताना चाहा कि जी जो इलाके का, इस इलाके का जो चौधरी है ना, वो ना सऊदी है ना तुम हो ना पाकिस्तान है ना कोई और है, इस इलाके का जो चौधरी है वो मैं हूं, जैसे कि वेस्ट का चौधरी अमरीका, इस इलाके का चौधरी मैं हूं, ठीक है, ना तो मोहम्मद बिन सलमान ना तुम ना कोई और, मैं हूं। नंबर वन। नंबर टू ईरान को बताया कि हमने तुम्हारी कमर तोड़ दी है, हमास को भी खत्म कर दिया है, हिजबुल्ला को भी खत्म कर दिया है,
जो उनके प्रॉक्सीज हैं,
जो उनके सो कॉल्ड प्रॉक्सीज हैं। तीसरी उसने बात यह बताने की कोशिश की है कि अगर तुम अपने आप को चौधरी समझते हो ना तो ये देखो तुम्हारी हम ऐसी तैसी फेर सकते हैं। चौथी उसने बात यह बताने की कोशिश की है कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी फेरेंगे भी और दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होगी, तो ये तो इसलिए तुम्हें हमारे आगे झुकना पड़ेगा। एक बहुत जबरदस्त एक कार्टून आ जाया है जो कि वेस्टर्न, जो अगर आप, क्योंकि ज्यादातर तो हम कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान के मीम्स देखो, इंडिया के मीम्स देखो, आजकल ये
मजेदार भी होते हैं,
मजेदार होते हैं, ये चल रहे हैं। वेस्ट के अंदर जो इस वक्त मीम चल रहा है ना, जो सबसे बड़ा मीम चल रहा है वो क्या चल रहा है आपको पता है, कि जितने भी अरब कंट्रीज के, ये मीम है और इसको आप माइंड करने के, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, सारे अरब कंट्रीज जो है ना ये सामने जो है ना ऐसे करके, अमेरिका जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है, इसराइल जो है वो खड़ा हुआ है ऐसे उंगली करके, तमाम अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज उसके पीछे उसके आगे झुके हुए हैं, सिर्फ ईरान खड़ा हुआ है। दिस इज अ मीम इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट। अभी बताने की कोशिश ये की गई है कि जो तुम लास्ट मैन स्टैंडिंग थे ना मुसलमानों के अंदर, उसकी भी हम ऐसी तैसी फेरेंगे और तुम्हें भी तमाम मुसलमानों की तरह लिटाएंगे अपने सामने, झुकाएंगे तुम्हें अपने सामने।
तो आपको लगता है ईरान झुक जाएगा?
ईरान नहीं झुकेगा और इसी की तकलीफ है और इसीलिए वो बार बार इस पर हमले करेगा और जो है ये कोई ना कोई बीच में से शरारत करता
है। मुझे ऐसा लगता है शादा जी, अगेन ये मेरा ये न्यूज नहीं है, तज्जिया, हम जाहिर एक दूसरे अपना तज्जिया दे सकते हैं, बाकी हकीकत जो है जाहिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये मेरा तज्जिया, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूं, ये फोरकास्टिंग के तौर पर इस खित्ते में ईरान यानी मिडिल ईस्ट की जहां बात कर रहे हैं, वहां एक न्यूक्लियर पावर कंट्री इसराइल के अलावा दुनिया मांगती है, ये मेरी और होना चाहिए। अब वो ईरान होगा, कतर होगा,
नहीं कतर वगैरह
मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, देखो सऊदी अरब नहीं होगा, कतर नहीं होगा, इराक नहीं होगा, ये तो सब कंट्री हमारे आपके सामने। तो ईरान एक ऐसा कंट्री है जो कि कोशिश भी करता रहता है। अब यहाँ सवाल,
ईरान का प्रॉब्लम भी है ना, ईरान के एक तरफ पे पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, और दोनों जो है न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये बीच में सैंडविच हुआ हुआ है और ये सोचता है कि अगर, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के साथ बीच में ईरान के काफी ताल्लुकात, वस्तान का जो
एरिया था
बहुत खराब थे, फिर बाद में इन्होंने सेट किए हैं,
बिल्कुल किए,
इंडिया के साथ बहुत हो गए थे जब
बहुत
यारी दोस्ती थी, अभी खराब हो गए हैं क्योंकि वो उनके स्पाइस पकड़े गए हैं, राइट। उसको लगता है कि ये जो मैं बीच में सैंडविच होके बैठा हूं तो मुझे अपने डिफेंस के लिए ये करना ही पड़ेगा, ऑल द मोर रीजन नाउ, क्योंकि अब इसराइल ने उसके ऊपर वो अटैक्स किए हैं। अब अगर उसका 20% रेजोल्यूशन था ना कि हमको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए, अब उसका 100% रेजोल्यूशन ये होगा कि अब तो हमको हर हाल में बनाने चाहिए, और अगर हमने इसराइल को ना बताया कि हमारे पास बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर जो है ये हमारे पे अटैक करता रहेगा। अगर इसको पता चल गया कि भाई ये भी अब एक न्यूक्लियर पावर है, मैं अब इसके साथ मस्ती नहीं कर सकता।
आपकी इसी बात पर जो आना चाह रहा था कि देखें, इंडिया ने जब एटॉमिक अपने जो है टेस्ट किए, पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट में सिर्फ ये कहकर इसी बात का वो बनाया था कि
डिटेरेंस
के लिए एक बैलेंस रहेगा, है ना। अब इंडिया चाहे दो जंगे तो हम पहले कर चुके थे, फिर उसके बाद से अब तक कोई हमारे दरमियान ऐसी कोई खुलकर जंग नहीं हुई, इसी वजह से कि अब दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है। अब इसराइल उस खत्ते में इसराइल के पास है, अब एक कंट्री ऐसा चाहिए, और ये आप देख लें, इस पर चाइना भी काम करेगा,
रशिया
भी काम करेगा, और जो बात होती है ना कि यार प्लांट उड़ा दिया, ये भी तो हो सकता है शायद जी, अगेन ये तज्जिया है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि कोई कंट्री, कोई मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, वो न्यूक्लियर केपेबिलिटी फैसिलिटीज ईरान के अंदर आके खुद ही इंस्टॉल कर दे, इनको जो एनरिचमेंट जो प्रॉब्लम आ रहा है, इनको जो यूरेनियम की एनरिचमेंट का है, मैं उस पर भी हम बात कर लेंगे,
ये प्रॉब्लम उनको वो मिल गया ना, एरिया सारा मिल गया यहाँ पे, कि
वो अपना उसका 60% तक वो लाते हैं, उसको 90% तक जो है उसको लेकर जाना है, जैसे ये 60 के करीब आते हैं कुछ होता है तो ये सब मामला अलार्म खड़े हो जाते हैं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि एक ऐसा कंट्री दुनिया का जिसके पास ऑलरेडी न्यू पावर हो, वो एज इट इज यूरेनियम 90% जो एक लेवल है जिसको बम बनाने के लिए या
न्यूक्लियर,
वो ऑलरेडी उनको यूरेनियम दे दे, तो फिर क्या होगा?
तो वो तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स।
और अगर मिडिल ईस्ट में आने वाले 100 सालों में या 50 सालों में,
हम इसमें एक बहुत बड़ा कंट्री भूल जाते हैं जब हम चाइना और रशिया बोलते हैं ना, और इलाके नहीं, हम इलाके की जब बात करते हैं, और जो तुमने बात की है ना कि तो हम इसमें एक बहुत मेजर कंट्री नॉर्थ कोरिया भूल जाते हैं।
मैं इसको हल्का रखा इसीलिए जो है ना कि वो बहुत खामोशी से काम करते हैं,
वो बहुत खामोशी से काम कर रहा है। उसके पास भी आई एम श्योर वो भी बताता नहीं है इसराइल की तरह कि मेरे पास सारा कुछ है, बट आई एम 100% श्योर
वो उस एरिया का बदमाश है,
और वो हो सकता है। ये जो आपने बात कही है मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करती हूँ आपकी बात को कि वो कोई एक कंट्री जो है ना जो उसको दे सकता है ईरान को, उसमें से एक वो भी हो।
उससे फायदा क्या होगा आप देखें, खत्ते में जो खासकर मिडिल ईस्ट, एक देखें मिडिल ईस्ट इज अ एनर्जी हब है, और अभी भी दुनिया को ऐसा नहीं कि सारी दुनिया जो है वो 5 सालों में 10 सालों में अलग इलेक्ट्रिक पे हो जाएगी दुनिया।
नहीं नहीं नहीं,
विच इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट
पॉसिबल नहीं है।
इस मीन यू नीड ऑयल एज एन एनर्जी। इस खत्ते में दुनिया की जो है ना वो परसेंटेज वाइज देख लें तो मेरे ख्याल से 70% नहीं तो 40-50% जो ऑयल है वो इसी खत्ते में, उस खत्ते में ईरान भी मौजूद है। तो अब ईरान उस खत्ते में बैलेंस करने के लिए अगर ये बैलेंस नहीं होती पावर तो इसराइल जो है वो अपना आगे बढ़ाता रहेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान को इम्पावर करना पड़ेगा, और कोई ना कोई कंट्री, मेरा तर्जी अगेन कि इस पे गलत हो सकता हूं, अगेन कोई चीज को उन्होंने आपने तो कहा था ये होगा, मेरी असेसमेंट ये कि कोई ना कोई कंट्री आने वाले वक्त में, आज नहीं 10 साल 5 साल 6 साल जो भी, इसको टाइम फ्रेम नहीं लॉक करते, ईरान हैज टू बी गेट सम न्यू पावर, उसको आना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस क्रिएट करेगा। बहुत से लोग इसके खिलाफ भी हैं कि जी ये तो खत्ते के लिए सही नहीं होगा। मैं कहता हूं ये खत्ते के लिए ज्यादा बेहतर होगा,
अच्छा
कि अगर किसी भी एक मिडिल ईस्ट कंट्री जिसमें ईरान को अगर हम ले लें इस वक्त, अगर वो आ जाता है तो एक बैलेंस मिडिल ईस्ट में जरूर आ
जाएगा। ईरान भी वही बात,
क्योंकि ईरान ने 200 सालों में देखें पीछे चले जाएं, ईरान ने खुद से जंग शुरू नहीं की,
कभी भी नहीं की है, सिर्फ एक वो इराक वॉर हुई थी।
इराक पर भी नो इराक वॉर भी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पुश किया कि आपने चढ़ाई करनी है।
बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि इनकी एक ही वॉर हुई है मेजर, जो
कोई के साथ भी गए थे थोड़ा सा
वो, हाँ वो एक साथ तो झड़पें आप उसको बोल सकते हैं,
लेकिन इराक ने वॉर शुरू की थी, ईरान ने वॉर शुरू नहीं की थी,
उसी ने शुरू की थी। अभी भी जो वॉर हुई है वो इसराइल ने शुरू की थी, ईरान ने नहीं की थी। तो ईरानी भी जो है ना वही बात है कि जरा ठंडे स्वभाव के हैं वो लोग भी।
ईरान का सिर्फ प्रॉब्लम ये रहा शहजादी, जैसे अब ईरान को भी सोचना पड़ेगा, पिछले 40 सालों में ईरान को अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं
उनको सॉल्व करना,
उनको पहले सॉल्व करना।
और हम ये कोई एतराज अगेन ना समझे कि क्योंकि लोग फट मजहब का कार्ड खेल रहे हैं,
मजहब की तो बात ही नहीं है इसमें।
नहीं, हम किसी वो मजहब का कार्ड नहीं खेल रहे, हम अपने पाकिस्तान को भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करना चाहिए। वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर।
अब ईरान को,
हम ईरान के लिए भी कह रहे हैं एग्जैक्टली,
इंटरनल उनके जो कमजोरियां हैं, खासकर जिस तरीके से ये लीक्स हो रही हैं, उनकी न्यूज हो रही है, इनके बड़े टॉप लीडर्स
अंदर ही तुम्हारे स्पाइस मौजूद है, इंटेलिजेंस क्या कर रही
थी,
क्यों
उन्होंने सजाएं देना शुरू कर दी
हैं, आपको पकड़े हैं ना लोग, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी।
देखें वो कहते हैं ना कि जब आंख खुले उसी वक्त सुबह, कनाडा को भी तो 200 साल के बाद पता चला गया जी टैरिफ लग गया, अब आपके साथ ट्रेड नहीं हुआ, तो अब आज जा गए ना वहां बात कर रहे हैं ना यूरोपियन यूनियन के साथ पहुंचे हुए कारनी साहब,
नेटो
पहुंचे हुए नेटो समिट में। तो जिस मेरा मानना ये कि जिस वक्त आपकी आंख खुली है वो सुबह है, पीछे जितने दिन गुजर गए उसको भूल जाइए, आज से नया दिन शुरू करें। और मैं कहता हूं कि इसी तरीके से कनाडा को जब ये हुआ था तो मैं कहता कनाडा को आगे सोचना चाहिए, इसी तरीके ईरान को भी इस से सबक सीखना चाहिए, जहां कमजोरियां चाहे इंटेलिजेंस की कोई प्रॉब्लम है या इंटरनल कोई प्रॉब्लम है अवामी तौर पर भी, तो उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए। देखें
बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है
शहजादी जी, कितने बर्तानिया उसके यूके जो है उसके अंदर आ जाए,
मिलियन बंदा है
फिर,
और ये तो वो कहते हैं
रकबे के हिसाब से भी बहुत बड़ा मुल्क है।
नहीं वो कहते हैं जी, और ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 100 मिलियन हो सकती है इनकी आबादी, हो सकती है बिल्कुल।
तो ईरान एक छोटा मुल्क नहीं है,
नहीं नहीं बहुत बड़ा,
और ऑयल पावर है, गैस है
हिस्ट्री है
पर्शियन एम्पायर की हिस्ट्री है पूरी,
है ना,
ऐसे नहीं है कि ये बस आज ही पैदा हो गया,
बस ये नौदौलतियों की तरह आज पैदा हो गए हैं, ये फूट पड़े हैं, ये मौसमी परिंदे की तरह नहीं, एक पूरी हिस्ट्री है, कल्चर है, एक पूरी लेगेसी है इन लोगों की इलाके के अंदर।
और तीन रिजिम जो है वो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि ईरान, और हमेशा ईरान ने सरवाइव किया, ईरान की कौम ने हमेशा खड़े हुए हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए
गैरतमंद है बेसिकली।
और मुझे लगता है कि अब
नहीं है ना किसी
जो है वो आने
की तकलीफ है, इनको सबको तकलीफ
प्रॉब्लम होती है, लेकिन बात को वहीं करके फिर हम न्यूज की तरफ चलते हैं।
बाकी तो सारे सजदा करके इनके सामने
नहीं शायद जी, मैं खैर सजदा किसी ने नहीं किया, मैं आपको बताऊं।
नहीं नहीं सारे झुके हुए हैं, सारे चमचे बने हुए हैं, सब सब मुस्लिम वर्ल्ड में वो दम कम ही
नहीं। मैं इस चीज को नहीं,
ये जो है ये एक खड़ा
बाय करता है, ईरान की अपनी पोजीशन अपनी जगह, लेकिन मैं इस चीज को बाय नहीं करता कि दूसरे झुक गए होंगे। हाँ सम टाइम पे ऐसा लगता है कि देखें
आपको पता है आज कतर के अंदर कितना प्रोटेस्ट आ रहा है, कतर जैसे कंट्री में जहाँ पे किंगडम है कितना वहां पे प्रोटेस्ट आ रहा है। लोग जो है इस चीज पे गुस्सा नहीं है, हालांकि अमीर इस चीज पे गुस्से थे और एमबीएस बहुत गुस्से में आ गए थे, तुमने कतर पे क्यों अटैक किया है। कतारी जो है वो इस चीज पे गुस्से नहीं है, कतारी के ईरान ने हमले, कतारी इस चीज पे गुस्से हैं कि कतर ने क्यों अपना बेस दिया इसको, यूएस को क्यों
हाथ से थोड़ा
दिया, क्यों दिया। हाँ ये लोगों को नहीं पता था ना आमिर, अब तो लोगों के सामने जब खुल के चीजें आई हैं तो तब उनके सामने ये है ना, तो लोगों ने आज मोर्चा निकाला हुआ है वहां पे कतर के अंदर, कतारी जो है वो कह रहे हैं कि क्यों तुमने दिया हुआ अमरीका को ये बेस जो है अपने मुल्क में। तो आज बहुत वहां पे शोर हंगामा मचा
है। खैर वहां आपको मालूम है कतर सऊदी अरब पे जिस तरह की गवर्नमेंट की जो एक सख्तियां हैं, जो जो बाहर नहीं आने देते, किंगडम्स हैं वो
है।
आपको लगता है ये इसको चलने देंगे
जो है
वो तो गोली मार देते हैं सीधा, वो तो गायब भी कर देंगे,
गोली गोली
गायब कर देंगे,
वतनियों को मारते नहीं,
वतनियों
को
गायब कर देंगे,
वो जरा सख्ती कर रहे थे, जेल में डाल देते,
जेल में डाल देंगे, गोली ना भी मारेंगे तो जेल में डाल देंगे, सजाएं दे देंगे उनको। तो ये सब मामलात जो है वो किंगडम के आगे कहां बोलते हैं। लेकिन बात खबरों की तरफ चलते हैं, आई विश कि ये जंग आगे ना बढ़े और इसको,
लेकिन इसराइल के ऊपर तो मुझे 0% भी कोई जो है ना वो नहीं है,
किसको है वो सुनने की किसी की तैयार नहीं है।
हाँ वो किसी की नहीं सुनने को तैयार, वो इलाके का बदमाश बना हुआ है बस।
नहीं बदमाश बना हुआ तो है लेकिन ऑल्टरनेट बदमाश खड़ा करना पड़ेगा तभी मिडिल ईस्ट में जो है वो कहते हैं कि अमन आ जाएगा। फिर आप 100 साल तक जो है वो दुनिया ट्रेड करे आपस। देखिये डोनाल्ड ट्रंप साहब की आप ट्वीट देखें, जैसे ये मामलात हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब को मालूम है कि ईरान, आपको मालूम है 60% ऑयल जो है चाइना ईरान जो है वापस में डील करते हैं।
जी 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 जी। और जब ये इसने कहा था कल ही
60%
जी कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करूंगा, तो उन्होंने कहा था चाइना के लिए हम उसके
नहीं
करेंगे, बंद करेंगे उसके नहीं करेंगे हम दुनिया।
और मैं इस हफ्ते या अगले हम देखते हैं, जैसी किसी दिन भी टाइम मिल गया या मैं अपना पूरा होमवर्क कम्प्लीट कर लूं तो पूरा जो चाइना का और जो प्लान है जिस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी पाइपलाइंस यूरोप तक ले जाने का इनका प्लान है, खासकर गैस की। और ईरान अगर ईरान के ऊपर से पाबंदियां हट जाती हैं तो ईरान किस तरीके से इस खित्ते में सऊदी अरब के मुकाबले में भी खड़ा हो सकता है। ईरान के अंदर इतनी एनर्जी जो है वो वाफर मकदार में है, ऑयल्स और गैस। ईरान जो है कहते हैं जो 70s या 50s का ईरान था ना, उससे कहते ना 50s का ईरान तो कहते थे कि जैसे कि तेहरान जो है वो न्यूयॉर्क है, पेरिस है, उससे भी ज्यादा अपनी प्रोग्रेस लेवल पर जा सकता है ईरान अगर ये मामला तय हो जाते हैं। लेकिन
और जाएगा भी, तुम देखना, क्योंकि अब चाइना जो है ना, चाइना ने देख लिया ना क्या हो गया यहाँ पे, चाइना अब अपना ऐसे ब्लॉक कार्व करके बनाना शुरू करेगा
इस पर, बिल्कुल
क्योंकि बात करेंगे पाकिस्तान के साथ कर रहा है ना ऑलरेडी रोड एंड बेल्ट, वो अब इस चीज को ईरान तक लाके और इसको पूरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक लेके जाना चाहता है। तो इसलिए वो ट्रेन तो चल पड़ी है पाकिस्तान से, राइट।
और
तो
गैस की बात देखें, ब्रेकिंग न्यूज अभी गैस की चल रही है। कल मैंने आपसे कहा था, हम जब डिस्कस कर रहे थे हमने कि गैस की प्राइस नीचे जाएगी अब, हालांकि हम देख रहे थे कि ऊपर जा रही थी 140, वीकेंड फ्राइडे 140 थी यहाँ और
गिर
गई। और अभी भी जब कह रहे हैं कि CP24 की ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं,
ब्रेकिंग नहीं ये कल रात से आ रही है, जैसे ही मतलब की न्यूज आई।
हाँ लेकिन अब इन्होंने टीवी पर दिखाना शुरू कर दिया कि कल जो है वो गैस प्राइसेस ड्रॉप मेजर करेंगी, लेकिन कितनी करेंगी आज रात से जैसे हो जाएंगी बहुत से बैंक से, तो ये सब चीजें जरूरी है। इन्फ्लेशन रेट आज जाहिर है, आप अपनी बात करेंगे इस पर भी, तो हम ऐसा करते हैं खबरों की तरफ चलते हैं ताकि मुकम्मल खबरें आप जो है वो शाजिया मलिक साहबा की जबान ही करेंगे। और ये खबरें आप हमें 770 AM डायल पर सुन सकते हैं, इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com पर भी ये लाइव जाएंगी इस वक्त जब हम खबरें सुनाएंगे। इसके अलावा हमारा टेलीविजन 24/7, उस पर भी ये खबरें आप हमारा पूरी ट्रांसमिशन लाइव देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने स्पॉन्सर की तरफ। जी शाजिया जी।
हाँ जी, तो दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह। राजा बादशाह जी के पास आप जाएं, दो गाड़ियां और एक अगर आपके पास घर है तो वो आपको बहुत सारे पैसे बचा के दे सकते हैं। ऑल स्टेट के साथ हैं, इनका नंबर है 6472903773। डॉक्टर नाजिया रहमान, तीन उनके डेंटिस्ट्री के ऑफिस हैं, दो ब्रैम्पटन में और एक मिसिसागा में। दांतों के कोई भी आपके जो है आपका मुश्किल या मसला है तो आप उनके पास जा सकते हैं। उनका नंबर है 9058721100। और अगर आप चाहते हैं आपका ट्रक का हेल्थ अच्छा रहे तो क्विक ट्रक ल्यूब QTL के पास आप जाए और उनकी नैपनी की जो खासतौर पर लोकेशन है बहुत जबरदस्त है। इनका नंबर है 1519622060 और फैसल चट्टा साहब के पास जाए अगर आपको मजे के ऑथेंटिक खाने खाने हैं तो एक इनका रेस्टोरेंट जो है वो है यहां पे मिसिसागा में और दूसरा ओकविल में। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 6477744888। और अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं जो बस चलते ही जाए और फटे ना खराब ना होए तो फिर आप स्पीयर एंड मके पे जा सकते हैं। स्पीयर एंड मके पे आपको बहुत अच्छे इटालियन फैब्रिक के कपड़े मिलेंगे तो आप उनके पास विजिट कर ले 775 ब्रिटानिया रोड पे। इनका नंबर है 9056703388। कोई भी आपकी फैमिली में इवेंट है और आपको अच्छी ज्वेलरी चाहिए तो आप असलम भाई के पास पायल ज्वेलर्स पे जाएं, बहुत जबरदस्त डिजाइन है उनके पास। उनका नंबर है 9057907879। बंडल डील्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के चाहिए तो आप सुल्तान भाई के पास जाएं, सुल्तान भाई 801 बुवेट ड्राइव वेस्ट पे होते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 9054502828। ठीक है जी, तो हम आपको लेके चलते हैं खबरों की तरफ और आज आपको पता ही है कि द हेग में पहुंचे हुए हैं सारे नेटो के जो एलाइज है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी साहब भी वहां पे पहुंचे हुए हैं और नेटो ने कहा है कि हम अपना डिफेंस बजट जो है उसको 150 बिलियन डॉलर्स पे अगर ये जो 5% करेंगे जो बढ़ाना चाहते हैं तो कनाडा का 150 बिलियन के ऊपर जो है वो पहुंच जाएगा। और मार्क कार्नी साहब जो है इसके ऊपर ज्यादा जाहिर है कि खुश नहीं है, कनाडा भी इतना ज्यादा जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये जो एनुअल समिट है इसके अंदर एक इंटरव्यू लिया है CNN ने कार्नी साहब का, तो उसके अंदर उन्होंने ये सारी डिटेल्स बताई है। उन्होंने कहा जी हम इनके ऊपर जाहिर है कि डिबेट जरूर करेंगे कि ये बेंचमार्क जो इंक्रीज किया जा रहा है डिफेंस स्पेंडिंग का, क्योंकि पहले तो कहा गया था कि 2% आपको GDP का डिफेंस पे लगाना है, उसके बाद इन्होंने कहा जी कि 3.5 जो है परसेंट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो 1.5% का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी इनका बढ़ रहा है और वैसे भी जो 2% भी था कनाडा तो उसको भी टच नहीं कर रहा था, तो इसलिए इन्होंने कहा जी कि हम जो है ये 3.5 तक चलो खिंच तो रूक है जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, तो वो इन्होंने बोला था कि ये कर लेंगे। तो फिर इन्होंने कमिट किया कि ठीक है 9.3 बिलियन जो है हम कमिट करते हैं एडिशनल डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के बजट को हम बढ़ाएंगे और जो हमारा एनुअल मिलिट्री अप्रोप्रिएशन है वो रफली 62 बिलियन के पास रहेगा। इसके अलावा जो लिबरल गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हम एडिशनल 45 बिलियन टू 50 बिलियन जो है वो डिफेंस डिपार्टमेंट पे लगाएंगे ताकि जो 3.5% का जो एक कार्नी साहब कमिट भी कर रहे थे GDP का वो डिफेंस पे लगाने को तैयार थे। और उन्होंने कहा था कि जी ये सारे के सारे 50 बिलियन के जो मेजर्स हैं वो अंडर कंसिडरेशन रहेंगे जो गवर्नमेंट करेगी आने वाले दिनों में, लेकिन अगर इन्होंने 5% कर दिया और 150 बिलियन हमको लगाना पड़ा तो फिर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल कनाडा के लिए आ जाएगी। कनाडा जो है जी उसने अब कमिट किया है कि वो उतना ही इंक्रीज कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो टाइम लाइन है वो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगी और इतनी बड़ी नेटो की स्पेंडिंग जो है अभी हम उसको टारगेट नहीं कर सकते। इस चीज का जिक्र जो है आज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अनीता आनंद साहिबा ने भी किया है। उन्होंने कहा कि अलायंस लीडर जो है नेटो के वो तो कह रहे हैं कि हमको जो है वो करना चाहिए 5%, लेकिन 5% जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अनीता आनंद साहिबा जो है मार्क कार्नी साहब के साथ द हेग में पहुंची हुई है और ट्यूसडे और वेंसडे यानी कि आज और कल जो मीटिंग्स होंगी अनीता आनंद साहिबा वहां पे होंगी, तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं 5% को ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने कहा उनसे जब पूछा गया कि आपकी गवर्नमेंट क्या ये एक्सेप्ट करेगी ये प्रपोजल, तो उन्होंने डायरेक्टली तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम जो नेटो के टारगेट्स हैं कनाडा वो पूरी तरह से पूरे करने की कोशिश करता है, जो कि जाहिर है कि 5% तो बहुत ही मुश्किल रहेगा। और उन्होंने कहा जी कि एलाइज जो है उन्होंने 2029 की डेडलाइन दी है इसको मीट करने के लिए। अगर आपको याद होएगा तो ट्रूडो साहब ने एक दफा कहा था कि जो हम 2% भी अपने GDP का मीट कर सकते हैं वो 2032 में करेंगे, तो अब अगर 2029 तक 5% करना है तो ये अब कैसे ये सेट कर सकते हैं या कैसे उस पर अग्री कर सकते हैं वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। कनाडा जो है जी वो अब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है डिक्लाइन यूएस और ओवरसीज विजिटर्स जो है उसके ऊपर आज स्टैट्स कनाडा ने ये पूरी खबर जो है ये दी है। अप्रैल के महीने में नंबर ऑफ ट्रिप्स टू कनाडा बाय यूएस रेजिडेंट्स वाज डाउन 8.9% और जो ओवरसीज विजिट्स थे वो भी 0.6% डाउन है। यूएस से तो आपको पता ही है क्यों है, हमने आपको बताया था कल अभी के जी कनाडा से बहुत कम जो है विजिटर्स अमेरिका जा रहे हैं, तो जाहिर है कि अब अमेरिकन भी कम ही आ रहे हैं यहां पे। और ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जिसमें कि यूएस रेजिडेंट्स का जो विजिट इंडिया सॉरी कनाडा पे वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया है, एंड सेवंथ कंसेक्यूटिव मंथ जिसमें कि ओवरसीज जो ट्रिप्स है वो भी बहुत ज्यादा नीचे आगे है। एशिया से पहले बहुत ज्यादा लोग आते थे लेकिन एशिया से भी बहुत कम लोग आ रहे हैं और ये दिस ऑल्सो इज डाउन 12.6% ईयर ऑन ईयर। बाय कंट्रास्ट जो है there was an increase in arrivals to Canada from Europe and Americas, और जाहिर है कि इसमें हम यूएस को एक्सक्लूड करेंगे तो बाकी के जो है कंट्रीज तो वहां से लोग जो है वो काफी आए हैं कनाडा के अंदर लेकिन एशिया से बहुत ही कम आ रहे हैं और इसमें जाहिर है कि इनको अब जो है काफी मुश्किलें जो हैं वो उसमें आ रही हैं क्योंकि जाहिर है कि टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर था, बहुत पैसा आता था मुल्क के अंदर, तो अब आपने जी सारों को नाराज ही कर दिया है। उसमें सबसे बड़ा चाइना था, चाइना को आपने नाराज कर दिया है और जो है वो फिर बहुत सारे लोग वहां से भी आते थे तो अब इसलिए आप के कर रहे हैं और अमरीका के साथ तो लड़ाई चल रही है। इरानियन एयर डिफेंसेस जो है उनको जी आज एक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि कोई भी जो ड्रोन्स हैं इनकी तरफ आ सकते हैं। वो कहते हैं जी कि ये ड्रोन्स आए भी है सिटी ऑफ तब्रेज की तरफ और इरानियन न्यूज एजेंसीज जो है उन्होंने ये बोला था क्योंकि ये जो सीज फायर है ईरान और इसराइल के बीच में काफी शेकी है। ये शेकी क्यों है हम आपको आगे जाके बताएंगे। एक अर्ली यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट जो है उसने कहा है कि ये जो यूएस की मिलिटरी स्ट्राइक्स है ऑन थ्री ऑफ ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो कि लास्ट वीक की थी उसने डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे कि कहा जा रहा था। हालांकि ट्रंप साहब ने कहा था कि जो हमारा मकसद था हमने ये जो तीन साइड्स पे किया था उससे हमारा मकसद जो है वो पूरा हो गया है लेकिन ये कहते हैं कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूटली रॉन्ग है और इन्होंने कोट किया है व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट और उन्होंने कहा कि जो वो हैं वो कह रही हैं कि आपका जो असेसमेंट है वो गलत है। अलबत्त इनका असेसमेंट है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ आज जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं पिज़ाकशियां उन्होंने बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कतर के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे और हमने आपको पहले भी बताया था अटैक से पहले कि ये आपके ऊपर अटैक नहीं है, ये यूएस जो बेस है और डायडा की उसके ऊपर है तो हम वहीं पे कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि ना तो कतर ना उसकी पॉपुलेशन को हम टारगेट बनाना चाहते थे और हम अलुडेड की जो एयर बेस थी उसके ऊपर हमने किया था और उसका भी हमने आपको बता दिया था, इसीलिए कोई सिविलियन जो है वो कैजुअल्टीज नहीं हुए थे और लोगों को निकाल दिया था। तो यानी क्योंकि काफी नाराज हो गए थे जो मोहम्मद बिन सलमान थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो सऊदी क्राउन प्रिंस है इस पर एतराज किया था कि तुमने कतर के ऊपर क्यों अटैक किया भाई, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है और उसने तो तुम्हारे पे कुछ वो नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी कि वो उनके ना पीपल ऑफ कतर ना तो कतर के ऊपर था, यूएस बेस पे था क्योंकि यूएस ने हमारे ऊपर हमला किया था और हमने पहले ही कहा था कि जो 19 बेसेस हैं यहां पे रीजन में हम उनके ऊपर करेंगे अमरीका की उसके अमरीका के जो हमारे ऊपर जो अटैक है उसके ऊपर। अमरीका की जो सुप्रीम कोर्ट है जी उसने अलाउ किया है ट्रंप साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है टू रिज्यूम डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स टू थर्ड कंट्रीज और विदाउट गिविंग देम अ चांस टू प्रेजेंट पोटेंशियल हार्म जो है वो पोज करते हैं यहां पे। ये डिसीजन जो है ये बहुत बड़ी विक्ट्री है ट्रंप साहब के लिए क्योंकि बहुत सारे इसके खिलाफ जो है बातचीत आ रही थी कि क्यों लोगों को बिना वजह से डिपोर्ट किया जा रहा है और उसके ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही थी कि ये लोग बहुत हार्मफुल है अमरीका के लिए और इनको हम नहीं चाहते हैं। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो अब ये इनके जो मैस डिपोर्टेशन एफर्ट्स है ये अब कंटिन्यू रहेंगे। कोर्ट ने इससे पहले जो था वो ऑर्डर जो दिया गया था यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ब्रायन मर्फी की तरफ से जिसमें कि उन्होंने मैंडेट किया था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो इंडिकेट कर सके कि उनको टॉर्चर का कोई रिस्क है जब उनको डिपोर्ट किया जाएगा, कोई खतरा तो नहीं है। ये यानी कि जाहिर है कि उन्होंने जज मर्फी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया था और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चीजें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती है कि ये लोग जो है खतरे की घंटी बजाए है इन्होंने हमारे मुल्क में तो इनको वापस भेजना ही पड़ेगा। ट्रंप साहब जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है इस चीज के ऊपर और दुनिया भी ऐसे अनसर्टन है। ये जो नेटो का समिट चल रहा है इसमें कि शायद अमेरिका जो है नेटो के साथ चलेगा और क्योंकि आपको पता ही है कि नेटो के अंदर जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो नेटो के अंदर सबसे ज्यादा पैसे पहले अमेरिका देता था। अपनी फर्स्ट टर्म में जब ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने कहा था जी कि अमेरिका क्यों सबसे ज्यादा पैसे दे, भाई आप लोग जो है आपको भी अपना हिस्सा देना चाहिए, और इसीलिए कहा गया था कि डिफेंस बजट को आप बढ़ाए। तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ऐसे करेगा। अच्छा, आज ट्रंप साहब जब द हेग की तरफ जा रहे थे तो अपने प्लेन पे जब थे तो एयरफोर्स वन पे, तो इनको पूछा रिपोर्टर्स ने कि क्या आप जो है ये जो म्यूचुअल डिफेंस गारंटीज हैं उनको आप देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन, यानी तुम्हारा डेफिनेशन क्या है गारंटीज का, वो उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने उसका जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आई एम श्योर यू नो अबाउट आर्टिकल 5 राइट। तो अब आर्टिकल 5 क्या है उसकी हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 5 जो है नेटो का, वो नेटो की कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल है जो कहता है कि आप जो नेटो एलाइज है डेवलप करेंगे डिफेंसेस टू क्रिएट अ म्यूचुअल प्रोटेक्टिव पैक टू काउंटर रिस्क पोस्ड बाय सोवियत यूनियन जो था उस वक्त का उसके लिए। तो अब तो ये खाली इसमें रशिया नहीं है, अब तो इसमें इन्होंने चाइना और ईरान और भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उनको ऐड कर लिया है। तो उसी का ये जो है ट्रंप साहब आज जिक्र कर रहे थे आर्टिकल 5 का, और उन्होंने कहा जी कि हां बिल्कुल अमरीका अभी भी कमिट करेगा टू सेव लाइव्स एंड कमिटेड टू सेफ्टी, लेकिन हम इसको क्या एक्सपैंड करेंगे अपने बजट को इसके लिए नेटो के लिए, वो उसके ऊपर कोई इलैबोरेट उन्होंने नहीं किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो है मार्क रूटे, उन्होंने बहरहाल ये रिपोर्टर्स के साथ आज बात करते हुए कहा है कि कोई उनको डाउट नहीं है कि यूएस अपने नेटो के कमिटमेंट्स जो है वो पूरे करेगा और जो आर्टिकल 5 के गारंटीज हैं उनको भी फॉलो करेगा। इरानियन प्रेसिडेंट जो है मसूद पजक्शियां जी, उन्होंने तो अनाउंस आज कर दिया है बिल्कुल एंड ऑफ 12 डे वॉर, और उन्होंने आज कहा है जी कि इसराइल ने हमारे ऊपर वॉर किया था और हमने उसका जवाब दिया था, लेकिन जो बहुत ही हेरोइक रेजिस्टेंस हमारी ग्रेट नेशन ने शो की है, ये जो और डिटर्मिनेशन शो की है, इसने हिस्ट्री क्रिएट की है और हम जो है विटनेस कर रहे हैं एक ट्रूस, और 12 दिन की वॉर जो है वो उसमें जो बहुत एडवेंचरिज्म दिखाया था और प्रोवोकेशन इसराइल ने, वो अब खत्म हो गया है। और उन्होंने कहा जी के लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ उनसे जब पूछा गया कि भई आप एयर स्पेस ईरान की खोल रहे हैं तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं वो रेडी हैं हर किसी से बात करने के लिए, इसके साथ साथ आज उन्होंने जोर दिया कि हम यूएस के साथ फिर से बैठ के बात करने को तैयार है विद इन द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। और इसके साथ साथ उन्होंने आज एक फोन कॉल एमबीएस को भी किया क्योंकि एमबीएस ने इनके ऊपर बहुत एतराज किया था, तो उन्होंने आज उनको भी जो है फोन करके समझाया। लेकिन अब इस सारी चीज के बीच में अब आप देखें ना कि अब ट्रंप साहब भी कह रहे हैं, ईरान भी कह रहे हैं, क्योंकि पजक्शियां साहब ने कहा कि हम बिल्कुल पहल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल किसी पे अटैक नहीं करेंगे, सीज फायर का मतलब सीज फायर ही है। जब ये बातें कर रहे थे मसूद पजक्शियां साहब, उसी वक्त इसराइल के जो मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ है एयाल जमीर, उसने कहा कि हमारी मिलिट्री जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर पे है और हमारी जो ईरान के अगेंस्ट कैंपेन है इट इज नॉट ओवर। तो मतलब है क्या फिर, इसका मतलब है फिर सीज फायर का क्या मतलब है जमीर साहब, जरा इसको एक्सप्लेन करें। तो अब इसके लिए जब इन्होंने ये बयान दिया तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने फिर से अर्ज किया ईरान और इसराइल दोनों को कि भई आप सीज फायर की जो है रिस्पेक्ट करें। इसके ऊपर बाकी जो नेशंस हैं उनके भी फिर जो है वो आंखें चौंकी। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग जी, उन्होंने भी कहा जी कि बीजिंग जो है बिल्कुल सपोर्ट करता है ईरान का जो है वो अचीविंग जेन्युइन सीज फायर, और उन्होंने एक्यूज किया फिर से इसराइल को कि तुमने वायलेट किया है जो, क्योंकि वो कुछ प्रोजेक्टाइल्स फिर भी सुना गया था कि उड़ के आए थे, तो चाइना ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि उसको इसराइल ने जो है वायलेट किया है, इस फ्रेजाइल ट्रूस को इन्होंने नहीं किया। इसके साथ साथ जो यूएस प्रेसिडेंट हमारे ट्रंप साहब हैं वो जो है उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी दयालुपना दिखाया है, उन्होंने चाइना को, सुनो जरा, ट्रंप साहब ने चाइना को कहा तुम अगर ऑयल खरीदना चाहते हो ईरान से तो तुम खरीद सकते हो। भाईजान थोड़े को इजाजत कौन ले रहे हैं, भाईजान थोड़े, उन्होंने तो अपनी ट्रेड रोकी ही नहीं थी, उन्होंने तो रोकी नहीं थी, तो आप कैसे कह रहे हैं। तो बहरहाल जी उन्होंने बड़े अपनी तरफ से कहा कि हाँ हाँ तुम अगर खरीदना चाहते हो अपने ऑयल जो है वो खरीद लो। तो बहरहाल चाइना अब सोचता होगा पायन हमने तो आपसे पूछा ही नहीं है। इसी तरह जो है चाइना भी कह रहा है कि ये रशिया भी कह रहा है कि भाई ये सीज फायर जो है इसकी आप इज्जत करो, लेकिन आप अगले इज्जत करने को तैयार नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, है ना। ऐसे नतन्याहू साहब जो है उन्होंने कहा जी कि इसराइल ने बड़ी हिस्टोरिक विक्ट्री ली है और जो आने वाली जनरेशन है वो इसको याद रखेगी, हमने जो ईरान के खिलाफ हमारी कैंपेन थी, जो इसका एक्सेस ऑफ ईवल था, हमास और हिजबुल्ला, उनको भी हमने खत्म किया और इनके खिलाफ भी विक्ट्री ली, और हमारे जो हॉस्टेजेस है गाजा से वो भी हम वापस लेकर आ गए हैं। अब कितने आए हैं ये मालूम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी के जो है वो हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड जो है वो व्हाइट हाउस में बैठा है, जाहिर है कि ट्रंप साहब के बारे में वो बात कर रहे थे। इसके साथ उनसे पूछा गया कि अभी भी हालांकि बहुत सारे अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया खुल के तो जो है वो आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्त भी नहीं है आपके, तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इलाके का सबसे बड़ा मुल्क है, बड़ा शक्तिशाली है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो कहते हैं कि विदाउट एग्रीइंग टू अ पैलेस्टीनियन स्टेट, ये जरा कॉन्फिडेंस देखे ये नतन्याहू साहब का, वो कहते हैं जी विदाउट एग्रीइंग टू अ पैलेस्टीनियन स्टेट मुझे लगता है कि वी कैन मेक पीस विद सऊदी अरेबिया। अब रियाद की तरफ से इनको क्या कोई बात आई है या नहीं आई है कुछ बोल नहीं सकते हैं। और आपको क्योंकि पता ही है कि सऊदी अरेबिया ने बार बार कहा है कि हम इसराइल के साथ बिल्कुल, जब तक ये टू स्टेट सॉल्यूशन के पैथवेज पे नहीं चलेंगे हम इनके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। तो नतन्याहू साहब कहते हैं कि नहीं, आई थिंक अवर स्ट्रेंथ इज द की टू एवरीथिंग, तो ये मान जाएंगे सऊदी। और वो कहते हैं जी कि मैं अरब लीडर्स के साथ बात करूंगा और जो कोई भी बात है वो उसको जो है सुलझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है इसराइल अपने रेड्स जो है किसी सूरत नहीं रोक रहा है, लेबनान के ऊपर भी इसने किया है, और लेबनान के ये जो विलेजेस है जरिया और कफरार मलिकी और अंसार इनके ऊपर किए हैं, यमन पे कर रहा है, सीरिया पे अटैक्स कर रहा है, और गाजंस को तो खैर पैलेस्टीनियंस को तो बिल्कुल ही खत्म करता जा रहा है, वो एक भी उनको बंदा वहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मिनिस्टर्स तो वैसे भी बड़ी विक्ट्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि ये पूरे का पूरा गाजा जो है हम उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो अब दोस्ती कैसे फिर होगी, बीच में से शायद दोस्ती भी है अब हमें ये भी मालूम नहीं है, लेकिन ऊपर से न तो अरब कंट्रीज कुछ कह ही रहे हैं कि जी दोस्ती नहीं है। एक सुइसाइड बॉम्बर जो है जी उसने एक अटैक किया है इनसाइड अ चर्च इन सीरिया, सीरिया के जो कैपिटल डमास्कस उसके अंदर किया है, और उसमें 25 लोगों की डेथ हो गई है और डजन जो हैं वो वुंडेड है। और ये ब्लास्ट जो है ये हुआ है द व्हील के अंदर, ये आउटस्कर्ट्स ऑफ डमास्कस में है, और ये हुआ है इनसाइड मोर एलियास चर्च के अंदर, और इसके अंदर जो इमीडिएटली किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो नहीं ली थी और न्यूज नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है सीरियन इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि जो ये लोग थे ये आइसिस के जो ग्रुप था ये एंटर हुआ था चर्च में और इन्होंने लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग की है। और एक जो लड़का था खास तौर पे उसने वो एक्सप्लोसिव वाली वेस्ट पहनी हुई थी, उसने अपने आप को डेटोनेट किया, और जो विटनेसेस थे उन्होंने हमको ये बताया है। तो पहले तो इन्होंने कहा जी कि डेथ टोल इनिशियली जो है वो 22 को टच कर रही है, लेकिन आज इन्होंने कहा है कि नहीं 25 जो क्रिश्चियंस हैं उनकी जनाब डेथ हुई है इस ब्लास्ट के अंदर। एक टेलीफोन कॉल की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, और इन्होंने बातचीत की है ये जो इलाके के अंदर मिडिल ईस्ट में खासतौर पे जो सिचुएशन बार बार चेंज होते जा रही है उसके ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि जी पाकिस्तान फुली सपोर्ट करेगा डी एस्केलेशन ईरान और इसराइल के बीच में, और ताकि पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ये जा सके। और ये जो कॉल थी उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो बिल्कुल चाहते हैं कि इलाके में हम भी और दूसरे भी इंटरनेशनल जो लॉज है और यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स है उसको सब लोग फॉलो करें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बिल्कुल सपोर्ट करेगा सऊदी अरेबिया की सॉवरेनिटी और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, और पाकिस्तान ने वेलकम किया ये जिस वक्त सीज फायर हुआ है ईरान और इसराइल के बीच में, और ये उन्होंने एमबीएस से भी बात की। और उन्होंने कहा जी कि इन दोनों पार्टीज को अब सीज फायर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान ने अपने फ्लाइट ऑपरेशंस जो है टू गल्फ कंट्रीज वो भी आज रिज्यूम कर दिए हैं। पीटीआई लेड जो केपी असेंबली है उसने आज पास किया है बजट 2025-26 का विदाउट द कंसेंट ऑफ इमरान खान, क्योंकि इससे पहले तो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जब तक बजट नहीं देखेंगे इसको पास नहीं किया जा सकता है, लेकिन केपी के जो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर साहब वो बहुत दिनों से कह रहे थे, धमकियां वैसे तो दे रहे थे कि अगर आपने ये बजट हमको पास ना करने दिया तो फिर जो है ये इमरजेंसी लग जाएगी, मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और गवर्नर राज आ जाएगा यहां पे। तो आज इन्होंने भारत जी ये बजट पास कर लिया, क्योंकि बाकी के तीन सूबे जो है वो अपना बजट पास कर चुके थे। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि लोग इमरान खान को भूलते जा रहे हैं, माइनस इमरान खान जो है वो यहां पे होना शुरू हो गया। आज मीडिया से बात कर रही थी ये अडियाला जेल में रावलपिंडी में, तो इन्होंने कहा जी कि जो चाहे आप इमरान खान को माइनस करें या ना करें, जो इमरान खान जो है वो उसकी रेलेवेंस आपको लग रहा है कि जैसे उसने गवा दी है नेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन ये जो सारे क्लेम्स है ये रूलिंग अलीट जो है वो कर रही है और बहुत ही ज्यादा वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान इररेलेवेंट हो गया, ये ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा जी कि पुलिस जो है वो बिल्कुल हमें रोकना चाहती है और उनको रोकने दो, लेकिन हम उनसे डरते नहीं हैं, हम आएंगे अपने भाई से मिलेंगे। और गवर्नमेंट जो है वो भी खौफ खा रही है कि पीटीआई फाउंडर जो है उसके मैसेजेस जनरल पब्लिक तक ना पहुंचे, तो इसलिए वो हमको मिलने नहीं देते, क्योंकि जाहिर है जो भी कोई इमरान खान से मिलकर आता है वो फिर सारी पब्लिक को मीडिया के सामने बताता है कि खान साहब ने क्या किया, और लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिसप्लेजर शो किया। ये जो अप्रूव किया गया है केपी का बजट, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि खान की इसके ऊपर रजामंदी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, मुझे नहीं पता कि केपी गवर्नमेंट जो है उसको रश इतना करने की क्या जरूरत थी, और जो है वो दो दिन भी वेट नहीं कर सकते थे, दो दिन वेट कर लेते तो कोई ना कोई खबर आ जाती इमरान खान साहब से। इसके साथ साथ आज लाहौर हाईकोर्ट जो है जी उसने जो एक बेल की पिटीशन डाली थी इमरान खान साहब ने, वो भी उन्होंने डिसमिस कर दी है इन 8 सेपरेट केसेस रिलेटेड टू मे 9 राइट्स और इंक्लूडिंग एन अटैक ऑन जिना हाउस इन लाहौर। 2 मेंबर लाहौर हाईकोर्ट बेंच जो था इट वॉज हेडेड बाय जस्टिस शहबाज अली रिजवी, और उन्होंने वर्डिक्ट जो है अपना जो है रिजर्व किया था आफ्टर लॉयर्स फ्रॉम द पिटीशनर एंड गवर्नमेंट साइड जो थे उन्होंने अपना कंक्लूड किए थे आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद आज उन्होंने अपना जो है ये दे दिया है, अपना वर्डिक्ट दिया है। उन्होंने कहा जी कि उनको कोई बेल नहीं दी जा रही है इस सिलसिले में, हालांकि जाहिर है कि इमरान खान साहब ना तो वहां पे थे ना उसका कोई उस वक्त उसके साथ ताल्लुक था, तो लेकिन फिर भी जी उसको नहीं हम दे रहे। 2 पाकिस्तान के जो आर्मी सोल्जर्स हैं उनकी शहादतें हुई हैं, क्योंकि एक जो है इंटेलिजेंस बेस एक इनको ऑपरेशन इन्होंने किया था साउथ वजीरिस्तान में, और उसमें उनको पता चला था कि इंडियन प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है और 11 टेररिस्ट जो है वो वहां पे है जिनको कि इन्होंने मार गिराया, और ISPR के मुताबिक ये जो यहां पे रिपोर्ट किए गए थे टेररिस्ट जिनको कि ये लोग फितना अल खवारिज कहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती फितना अल खवारिज क्यों कहते हैं, क्योंकि वेस्ट को तो समझ ही नहीं आ सकती है फितना अल खवारिज, जैसे कि इंडिया कहता है पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट, इनको भी कहना चाहिए इंडिया बेस्ड टेररिस्ट, जो कि सारी दुनिया को समझ में आएगा, और खुद ही कह रहे हैं कि इंडियन प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, तो अगर इंडियन प्रॉक्सी ग्रुप्स थे तो इंडियन जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आप इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल जी फितना अल खवारिज उनको बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है इसमें ऐसा हमने इनको पकड़ा है हमारे। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है कि 2 फौजी जवान और जो है आज बहुत ज्यादा गंभीर अंदाज में, कुछ तो जख्मी हुए और 2 की डेथ हुई है। पानी का जो मसला है जी वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कराची में, और कराची में ये जो वाटर टैंकर्स हैं उनकी वजह से जो इतने अंधाधुंध वो फिर रहे हैं कराची में, तो उसकी वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो भी बेतहाशा आ रहे हैं। अभी साल शुरू ही हुआ है और ये जो पानी के लिए लोग टैंकर मंगवाते हैं इससे टक्कर खागा के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके अंदर 138 लोगों की जो है वो डेथ्स हुई हैं, और आज भी एक वाकया हुआ जो फ्यूचर मोड़ के पास लांडी के अंदर के एक जो मोटरसाइकिल वाला था विच हु इज आइडेंटिफाइड एज फसी, उसका टक्कर हुआ इस वाटर टैंकर के साथ और उसकी डेथ हुई है, और उसके बाद ये जो वाटर टैंकर का जो ड्राइवर था वो भाग गया और उसने अपने व्हीकल को अबंडन किया। तो ये वाकयात जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वाटर क्योंकि मिलता नहीं है लोगों को, वो वाटर टैंकर्स मंगवाते हैं, वाटर टैंकर्स अंधों की तरह चलते हैं, वो जो है वो शहरियों के साथ टकरे उनकी होती है और फिर बहुत सारे शहरियों की जान जाती है। तो इसके ऊपर आज जो है सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है उनको आज जो है वो ये बात की गई है। दिल्ली के अंदर जी आज एक प्रो पैलेस्टीनियन जो है स्टूडेंट्स का एक जो है प्रोटेस्ट था इन फ्रंट ऑफ द इजरायली एम्बेसी इन दिल्ली, और इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, और ये जो थे ये बहुत ज्यादा जो है नारे लगा रहे थे और कंडेम कर रहे थे ये जो इसका ऑन गोइंग जिनोसाइड है इसराइल का पैलेस्टाइन के अंदर, और सॉलिडेरिटी शो कर रहे थे विद द ग्लोबल मार्च टू गाजा। आपको पता ही, हमने आपको खबर सुनाई थी लास्ट वीक कि बहुत सारे लोग जो है अब इजिप्ट के थ्रू जाना चाहते हैं गाजा में फूड लेके, जिनको कि इजिप्ट की गवर्नमेंट ने रोका हुआ है और उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो भी फॉलो करते हैं इसराइल की इंस्ट्रक्शंस। तो उसके साथ जो है ये जो है सॉलिडेरिटी शो कर रहे थे। देवर ज्वाइंड बाय रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया एंड दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड नौजवान भारत सभा प्रोटेस्टर्स, और ये फोटोज कैरी कर रहे थे नतन याहू की और जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और इसराइली फ्लैग लेके चल रहे थे और स्लोगन दे रहे थे फ्री पैलेस्टाइन एंड द जीनोसाइड इन गाजा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट थे, इनको फिर पुलिस ने रोका, और इनके मुताबिक, स्टूडेंट्स के मुताबिक, अलेजली पुलिस ने इनको फिजिकली असॉल्ट किया, मारा पीटा, और जो फीमेल जो प्रोटेस्टर्स थी उनको हरेस किया अलेजली, और उनको फिर डिटेन किया, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। तो आज स्टूडेंट्स ने जो है इसके ऊपर काफी शोर हंगामा मचाया। राहुल गांधी जी जो हैं वो फिर से एक और यात्रा के ऊपर जो है लंदन गए हुए हैं, और लंदन जब ये गए हैं तो अब बीजेपी जो है बहुत ज्यादा भड़क गई है फिर से। वो कहते हैं जी जब भी राहुल गांधी से सवाल करने का हमारा टाइम आता है, खुद तो ये सवाल करते रहते हैं मोदी जी से, लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो ये मुल्क से भाग जाते हैं। और कांग्रेस ने कहा कि ये रायबरेली से जो एमपी हैं राहुल गांधी जी, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है लोकसभा के अंदर, तो ये जहां भी जाना चाहते हैं हमको बता के जाते हैं, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस दफा वो फिर से लंदन गए हैं। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ जो है अमित मालविया, उन्होंने कहा जी कि आप तो बता रहे हो कि ये लंदन में है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि इन्होंने जो फ्लाइट जो है वो ली है वो तो बहरेन में गई है, तो बहरेन में ये कैसे गई? और गांधी जी कुछ ज्यादा ही फॉरेन ट्रिप्स नहीं लगाना शुरू हो गए हैं, और ये क्यों इतने ज्यादा सीक्रेट फॉरेन ट्रिप्स जो है वो लगा रहे हैं? अभी राहुल गांधी जैसा आदमी सीक्रेट रह सकता है? आप खुद सोचें, दुनिया के जिस हिस्से में जाएगा वो पहचाना जाएगा। तो वो कहते हैं जी कि नहीं, बीजेपी के अमित मालविया साहब कहते हैं ये सीक्रेट इतने फॉरेन ट्रिप्स क्यों लगा रहा है। तो इसके ऊपर जो है कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन हेड है पवन खीरा, उन्होंने कहा जी कि पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसकी तो आदत है, वो ये डर्टी ट्रिक्स खेलता है और उसको मालूम शालूम कुछ होता नहीं है, और राहुल गांधी जो है वो लंदन गए हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी अपनी नीस की अटेंड करने के लिए, और वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो जो है उसके अंदर यानी कि अपनी भांजी की वो अटेंड या भतीजी की जो है वो अपना ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने गए हैं, तो वो वापस आ जाएंगे, तो इसमें अब इतना रोने शोने की क्या बात है? तो कोई उसमें सीक्रेसी तो है ही नहीं, और वाकई बात तो यही है कि सीक्रेसी की कुछ नहीं है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सारा खान साहिबा, बड़ी खूबसूरत है, आपने देखा होगा उनको ड्रामों में बहुत जबरदस्त जो है, अभी आई थी बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रामे में अब्दुल्लापुर का देवदास, उसके अंदर बड़ी उसकी एक्टिंग जो है वो इंडिया में भी पसंद की गई। तो उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू दे रही थी जिसमें कि उन्होंने बोल दिया कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, और मैं जरा ओल्ड स्कूल हूं, जब मेरे हस्बैंड जो हैं ये बिल विल पे करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं लाइनों में खड़े होकर जो है वो बिल्स वगैरह पे करूं। अब रेहम खान साहिबा को जो है चौथे महले तकलीफ इसकी हो गई है, भाई तुम लंदन में बैठी हो, लंदन में आराम से चैन से बैठो, क्या तुम्हें तकलीफ है? हर बंदे को इजाजत है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना देने के लिए ओपिनियन। तो जी इनको बड़ी तकलीफ हो गई है रेहम खान साहिबा को, इन्होंने कहा जी कि तुम मत भूलो कि तुम जो काम भी कर रही हो इट इज बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म, तुम्हारी जो आजादी मिली है वो भी इसलिए कि बहुत सारे फेमिनिस्ट जो है अपने हक के लिए बोलते थे, और तुमको ऐसे रिग्रेसिव रिमार्क्स नहीं देने चाहिए है, और तुम जैसे लोग जो पोजिशन ऑफ पावर में होते हैं वो अगर नहीं भी है फेमिनिस्ट तो भी उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो हैं जो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है उनको बहुत ज्यादा खराब करती है। अच्छा जी चलो ठीक है। राइजिंग पाकिस्तान फैशन शो जनाब एक कुछ दिन पहले लंदन में हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज किया था यूके बेस्ड जर्नलिस्ट ने, और इसके अंदर सना नवाज, आयशा उमर, अफजल अली, नवाल सईद के साथ और भी बहुत सारे जो लोग थे। अब सोशल मीडिया जो है वो इस फैशन शो को बहुत ज्यादा हिट कर रहा है, वो कह रहा है जी कि तुम लोगों ने पाकिस्तानी कल्चर तो उसके अंदर दिखाया नहीं है। सना को खासतौर पर उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि तुमने मजाजन के ऊपर तो बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा एक और सिंगर है अमीरा मीर, उसके ऊपर भी बहुत सारा एतराज आ रहा है, तो वो कह रहे हैं जी कि तुम्हारा बहुत ही बोल्ड जो था वो परफॉर्मेंस था, क्योंकि जरा वो स्कर्ट में जरा टांगें उसकी बेचारी की ज्यादा नजर आ गई थी, तो पता नहीं अब इनका ये पागलपन कब जाए। جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ تم ساروں کے ساتھ واٹ از رانگ, تم لوگ تو ایک لگ رہا تھا اسٹیج ڈراما کرے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر ذرا لہنگے اور شرارے اور یہ چیزیں تھیں زیادہ ہی تھیں کچھ. تو بہرحال تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اسٹیج ڈراما لگ رہا تھا, یہ تو فیشن شو نہیں لگ رہا تھا. چلو جی, جو فیشن شو دے وچ اگر کوئی تھوڑے ٹنگا نظر آ جاتی ہے تو اس وچ بھی تو انہوں تکلیف ہے, اور مطلب چاہتے کی ہو. پھر ایک نے امیرہ کو کہا کہ تم تو بالکل لگ رہی ہو کہ تم چاہت فتح علی خان کی اسٹوڈنٹ ہو, یعنی کہ تم بہت برا گا رہی تھی. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ویسے بھی ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ لاسٹ ویک میں یہ ہو رہا تھا اور پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں وہ کیسے اتنے انسینسٹیو ہو رہے ہیں, جبکہ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ شروع ہو رہی. بھائی جان, تھرڈ ورلڈ ہو رہی تھی, لوگوں نے روٹی کھانا پینا ہنسنا, کانسرٹ ویسٹ میں بند ہو گئے تھے, جو میٹنگز ہیں وہ بند ہو گئی تھی, کوئی جو میل چول تھا سب بند ہو گیا تھا. مطلب ہے واٹ از دس بٹ اینی ویز. اچھا جناب, یہ اب جسٹن ویور اور ہیلی جو ہے ان کی بیگم, اس کے بیچ میں اب لگ رہا ہے کہ میرج کافی دن بدن خراب اور زیادہ ہوتے جا رہی ہے, کیونکہ ان کے جو دونوں کے جو پرسپشنز ہیں کہ پبلک میں ہمارا پرسپشن کیسا نظر آنا چاہیے جسٹن کا اور ہیلی کا, وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. ہیلی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بالکل پبلک آئے سے اپنا پرسنل ریلیشن شپ چھپا کے رکھا جائے اور بالکل بھی اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کیا جائے. ہیلی جو ہے وہ اور اس کے اوپر بھی بڑی اپسیٹ ہے کہ جسٹن کو وہ کافی دفعہ بولتی ہے کہ تم کو ہیلپ لینی چاہیے, اپنا جو ہے وہ لینا چاہیے, ٹریٹمنٹ لینا چاہیے, لیکن وہ بالکل ان ولنگ ہے, وہ بالکل ٹھیک ہونا نہیں چاہتا ہے, ڈپریس رہنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی کی وجہ سے جسٹن جو ہے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ ہیلی بہت ہی سپرفیشل طریقے سے دنیا کے سامنے ہمارے ریلیشن شپ کو بہت بنا سنوار کے رکھنا چاہتی ہے. بھائی جان, ہر اچھا بندہ جو ہے دنیا کے سے چھپاتا ہے اپنا اگر کوئی خراب ریلیشن شپ ہے تو وہ بڑی اس کا مطلب ہے سمجھدار لڑکی ہے, وہ بتانا نہیں چاہتی ہے کہ آپ کے اور اس کے بیچ میں کچھ ڈفرینسز ہیں. بارا جی, یہ جو وہ کہتا ہے جی کہ نہیں, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, ہم پبلک آئے میں جیسے ہے ویسے ہی رہنا چاہیے, اور اس کا جو لیک آف موٹیویشن ہے ٹو گیٹ ویل وہ بھی جو ہے ہیلی کو بڑا کرتا ہے. تو اب لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی میرج زیادہ دن شاید نہیں چلے گی. پاکستان کے فاسٹ بولر محمد عباس اور انڈین وکٹ کیپر جو ہیں ایشان کشن, ان کی وجہ سے ان کے بیچ میں جو پیار محبت دیکھا گیا ہے ناٹنگہم کے اندر, یہ جو انگلش کاؤنٹی چیمپئن شپ چل رہا ہے اس میں یہ دونوں کٹھے کھیل رہے ہیں, تو وہ اس کو دنیا جو ہے وہ بڑی پسند کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بڑے ہارٹ وارمنگ جسٹس دونوں کے بیچ میں دیکھے جا رہے ہیں, بڑے جوائے فل ایکسچینج ہے, اور وہ کافی جو ہے وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور کرکٹ لورز جو ہے اس کو بڑا ایڈمائر کر رہے ہیں دونوں نیشنز میں, انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کیمراڈری ہے وہ کافی جو ہے دیکھی جا رہی ہے, یہ جو خاص طور پہ یہ جو میچ یارک شائر کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کے اندر, تو کافی جو ہے وہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. انگلینڈ کے لیگ سپنر جو ہیں عادل راشد, وہ ایک بہت ہی پاپولر جو پوڈ کاسٹ ان کا ہوتا ہے بیئرڈ بیفور وکٹ, تو اس کے اندر یہ بات کر رہے تھے, اور ان کے فیلو انگلش پلیئر معین علی جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا ایک فین فیورٹ کوسچن پوچھا گیا ان سے, اور انہوں نے کہا جی کہ کون جو ہے وہ بہت ہی ایلیگنٹ کور ڈرائیو کرتا ہے, بابر اعظم یا کہ وراٹ کوہلی. تو انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ زبردست جواب دیا جس میں کہ دونوں ہی سپر سٹارز کو اس نے خوش کر دیا, اور اس نے کہا جی کہ بابر کا جو کور ڈرائیو ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے, لیکن ادروائز جو کوہلی کا سٹریٹ ڈرائیو ہے اور جو اس کا وپ ہے وہ تو آؤٹ آف دس ورلڈ ہے, بہت ہی زبردست ہے. انڈیا کے جو رائٹ آرم پیسر ہیں محمد سراج اور انگلینڈ کے اوپنر جو ہیں بین ڈکٹ کے بیچ میں کافی تو میمے ہوا, جو ان کا فرسٹ سیشن آف فرسٹ ڈے آف فرسٹ ٹیسٹ جو ہو رہا ہے ان کا یہاں پہ انگلینڈ کے اندر, تو اس میں جو ہے کافی ان کے بیچ میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ ناٹنگہم شائر کے اندر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس وقت ہوا, فائنل ڈلیوری جب دی اب 30th اوور, اور سراج جو تھا وہ سپرنٹ کر رہا تھا ٹو بول, لیکن جو زیک کرالی ہے وہ جو ہے اس نے پل بیک کیا بہت لیٹ, اور یہ سگنل کیا کہ جیسے ڈسرپشن ہے سائڈ سکرین کے اوپر, اور پھر جو ہے یہ ڈکٹ بھی بھاگ کے آیا, تو اس کو لگا کہ جیسے اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی ہے, اور پھر لیکن بعد میں یہ شیپی ہو گئے, پھر دیکھا جا رہا تھا کہ یہ ہنس رہے تھے. اوپننگ بیٹسمین بین ڈکٹ جو ہیں وہ ٹاپ سکورر رہے فار انگلینڈ, اور انہوں نے بنائے 149 آف 170 بولز, اور انہوں نے 21 چوکے مارے جناب, اور اس نے ہیلپ کیا انگلینڈ کو ٹو چیز بہت ہی جو ہیوج قسم کا ٹارگٹ تھا آف 371 رنز, اور انہوں نے بیٹ کیا انڈیا کو 5 وکٹ سے ان دا فرسٹ ٹیسٹ آف 5 میچ سیریز. डकेट और जो जैक क्रॉली है उन्होंने जी डोमिनेट किया इंडिया की बॉलिंग को और 188 रन्स बनाए। क्रॉली जो है उसने 126 बॉल 65 जो है उसने बनाए। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, इसी मैच के अंदर ये जो चल रहा है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, इंडियन टीम ने बहुत ही एक अनवांटेड रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि इनको जो डिफीट हुई है फर्स्ट टेस्ट में अगेंस्ट इंग्लैंड, हालांकि इन्होंने 500 रन यानी कि 5 टन्स यानी कि 5 सेंचुरीज इन्होंने बनाई हैं, फिर भी कोई भी टीम कभी टेस्ट के अंदर जो 500 रन बना लेती है तो वो हारती नहीं है, लेकिन इंडिया की टीम ने 500 रन बनाने के बावजूद ये जो फर्स्ट टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ हुआ है उसमें ये हारी है और ये उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। नो अदर टीम इन टेस्ट क्रिकेट्स 148 ईयर हिस्ट्री हैज एवर डन दिस, और जाहिर है कि कोई करना भी नहीं ऐसे चाहेगा। एंड दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट के कोई टीम 500 रन बनाए और फिर भी हार जाए। 500 रन बहुत होते हैं भाई, बहुत रन होता है 500, तो फिर भी हार गए। भारत जी इंडिया ने ये जो है ये अनवांटेड रिकॉर्ड रहे। तो ये थी जनाब हमारी आज की,
जनाब ये थी हमारी अब तक की गर्मा गर्म खबरें, और बहुत सारी चीजें शायद पहली बार होती हैं तो
हाँ ये भी
500 बार भी देखिए रिकॉर्ड तो हो गया ना।
हाँ रिकॉर्ड बनाया,
रिकॉर्ड हो गया अपनी जगह।
हाँ बिल्कुल,
तो रिकॉर्ड बनना अच्छी बात होती है।
अच्छी बात कैसा भी हो थलो
डिग्री डिग्री होती है, जैसे डिग्री डिग्री होती है,
डिग्री होती है,
रिकॉर्ड है,
चाहे चाहे जेली है चाहे असली है,
रिकॉर्ड है,
रिकॉर्ड है,
चाहे 500 रन से जीतने का या 500 रन दूसरी बना भी ले फिर भी
फिर भी हारने का
रिकॉर्ड रिकॉर्ड
रिकॉर्ड रिकॉर्ड
तो जबरदस्त रिकॉर्ड है। आई रियली अप्रिशिएट।